लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान संत पापा फ्रांसिस का पुरोहितों को किया गया संबोधन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभव का जिक्र कर रहे हैं, जिसे उन्होंने इस वर्ष 17 फरवरी को रोम में हुई पुरोहिताई पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान अपने पुरोहित भाइयों के संग साझा किया था। अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा फ्रांसिस अपने पुरोहित भाइयों से कहते हैं,
Tuttavia, in questo senso non si può permettere che si creda che l'amore fraterno sia un'utopia.
हमें चाहिए कि हम भ्रातृत्व प्रेम को आदर्श के रूप में ना देखें, ना ही एक तुच्छ वाक्यांश स्वरूप जो हममें सुखद भावनाओं को जागृत करती हो या असहमतियों को शांत कर देती हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हममें से हर कोई इस बात से वाकिफ है कि एक समुदाय में या पुरोहितों के निवासालय में रहना कितना कठिन होता है। एक बार एक संत ने कहा कि सामुदायिक जीवन उसके लिए त्याग के समान था। हमारे लिए उनके साथ जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है, जिन्हें हम अपने भाई बहनों के रूप में देखने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। भ्रातृत्व में प्रेम, बशर्ते कि हम इसे चीनी समान मीठा ना बनाएं, इसे फिर से परिभाषित ना करें या इसके महत्व को कम ना करें, यह महान भविष्यवाणी है जिसे आज के फेंके जाने वाले समाज में हम जीवन का अंग बनाने हेतु बुलाए जाते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं भ्रातृत्व प्रेम को एक आत्मा की व्यायाम शाला स्वरूप देखता हूँ, जहाँ हम रोज दिन अपने विकास को देखते और अपने आध्यात्मिक जीवन के तापमान की जांच करते हैं। आज भ्रातृत्व की भविष्यवाणी अपने में धूमिल नहीं हुई है, लेकिन इसे संदेश वाहकों की जरूरत है, नर और नारियों की, जो अपनी कमजोरियों और चुनौतियों से वाकिफ हैं, जो अपने को ईश वचनों के द्वारा स्पर्श होने देते, जो ईश वचनों से चुनौती और प्रभावित होते हैं। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। भ्रातृत्व प्रेम पुरोहितों को एक छोटे समूह में सीमित नहीं रखता है, लेकिन यह अपने को करुणामय प्रेरिताई में अभिव्यक्त करता है। यह हमें ठोस प्रेरितिक कार्य को प्रेरित करता है। हम कह सकते हैं कि हम प्रेम करने के योग्य केवल तब होते हैं जब हम संत पौलुस के निर्देशानुसार अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। केवल वही जो प्रेम करने की चाह रखता है अपने में सुरक्षित रहता है, वे लोग जो काइन की बीमारी से ग्रसित हैं, इस बात से विश्वस्त हैं कि वे दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं में प्रेम का अभाव पाते हैं। वे अपने को दूसरों के द्वारा अप्रशंसनीय पाते, यह उन्हें सदैव चिंता से भर देता और वे सहज अनुभव नहीं करने के कारण भटकते रहते हैं। यही वह विशेष कारण है जिसके द्वारा वे और अधिक बुराई के शिकार होते हैं, जहां वे अपने को और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। पुरोहितों के बीच इस कारण प्रेम का होना जरूरी है, जिससे वे अपनी और दूसरों की रक्षा पारस्परिक ढंग से कर सकें। संत पापा फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हैं कि जब पुरोहिताई भ्रातृत्व उनके बीच निकटता और मित्रता का विकास होता है, तो वे अपने समर्पित ब्रह्मचर्य के जीवन में अधिक शांति का अनुभव करते हैं।
Celibato è un dono che la Chiesa Latina custodisce, ma è un dono per essere vissuto come santificazione e necessita di relazioni sane.
ब्रह्मचर्य एक उपहार है जिसे लातिनी कलीसिया अपने में सुरक्षित रखती है। हमें इस उपहार को पवित्रता हेतु एक साधन स्वरूप जीने की जरूरत है। यह दूसरों के संग स्वस्थ संबंधों की स्थापना हेतु निमंत्रण देता है। हम एक सच्चे सम्मानजनक संबंध और सच्ची भलाई में जीने हेतु बुलाए जाते हैं, जो यीशु ख्रिस्त में हमारे संबंध को और अधिक गहराई प्रदान करती है। मित्रों के बिना और प्रार्थना के अभाव में ब्रह्मचर्य अपने में एक असहनीय भार हो सकता है, जो पुरोहिताई की सुंदरता के साक्ष्य में विरोधाभाव उत्पन्न कर सकता है। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस चौथे और अंतिम निकटता की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए हमें कहते हैं,
Molte volte ho sottolineato come la relazione con il popolo santo di Dio è per ciascuno di noi non un dovere ma una grazia.
मैंने बहुत बार इस बात पर जोर दिया है कि कैसे ईश्वरीय पवित्र प्रजा से हमारा संबंध हम सबों के लिए एक कार्य मात्र नहीं बल्कि कृपा होती है। दूसरों को प्रेम करना हमें आध्यात्मिक ताकत की ओर खींचता है, जहां हम ईश्वर से संयुक्त होते हैं। यही कारण है कि दूसरों के संग निकट संबंध में हर पुरोहित का एक विशेष स्थान होता है। एवंजेली गाउडियम में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैंने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मा को बचाने हेतु हमें चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक रुचि जागृत करें, जिसके द्वारा हम लोगों के जीवन में उनके निकट रह सकें या स्वयं हमारे लिए एक बृहद खुशी का कारण बनती है। हमारा प्रेरितिक कार्य यीशु ख्रिस्त की लालसा और लोगों के लिए हमारा जुनून है। जब हम क्रूसित यीशु ख्रिस्त के सम्मुख खड़ा होते तो हम उनके प्रेम की गहराई को देखते हैं, जो हमें ऊपर उठाता और हमें पोषित करता है। लेकिन वहीं यदि हम अपने में अंधे ना हों तो हम यह अनुभव करने की शुरुआत करते हैं कि यीशु की निगाहें प्रेम में उद्दीप्त अपने विश्वासी भक्तों का आलिंगन हेतु आगे बढ़ती है। हम पुनः एक बार यह अनुभव करते हैं कि वे हमें साधन बनाना चाहते हैं, जिससे हम ईश प्रजा के निकट आ सकें। यीशु ख्रिस्त पुरोहितों का उपयोग करना चाहते हैं, जिससे वे अपनी पवित्र प्रजा विश्वासी भक्तों के सम्मुख आ सकें। वे हमें लोगों के बीच से चुनते हैं और हमें अपने लोगों के बीच भेजते हैं। लोगों के संग संयुक्त होने की अनुभूति के बिना हम उनके बीच अपनी गहरी पहचान को नहीं समझ सकते हैं। पुरोहितिक पहचान ईश्वर के विश्वासी भक्तों के संग अपने को संलग्न किए बिना नहीं समझी जा सकती है। श्रोताओ, संत पापा कहते हैं,
Sono certo che per comprendere nuovamente l'identità del sacerdozio oggi è importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente.
मैं इस बात से विश्वस्त हूँ कि पुरोहिताई की पहचान को नवीन बनाते हुए यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने को लोगों के जीवन में निकटता से सम्मिलित करें, उनकी राहों से विमुख हुए बिना उनके संग रहें। कभी कभी हम उन ख्रिस्तियों के अनुरूप व्यवहार करने की परीक्षा में पड़ जाते हैं जो ईश्वर के घावों से अपने को दूर करते हैं। हालांकि यीशु हमसे इस बात की मांग करते हैं कि हम मानवीय दुख दर्दों का स्पर्श करें, दूसरों के शरीर के घावों का स्पर्श करें। वे हम सबों से यह आशा करते हैं कि हम उन व्यक्तिगत या सांप्रदायिक निशानियों को खोजना बंद करें जो हमें मानवीय दुर्भाग्य के संकट से दूर रखती है। इसके बदले हमें चाहिए कि अन्य लोगों के जीवन की वास्तविकता में प्रवेश करते हुए उनकी संवेदनशीलता की शक्ति को जानने की कोशिश करें। जब कभी हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन अपने में आश्चर्यजनक रूप में कठिन हो जाता और हम इस बात को अधिक गहराई में अनुभव करते हैं कि एक प्रजा होना लोगों के जीवन का अंग होने का अर्थ क्या है। एक प्रजा होना अपने में तार्किक श्रेणी नहीं है, नहीं, यह एक पौराणिक श्रेणी है। इसे समझने के लिए हमें उनके निकट जाने की आवश्यकता है, जैसे कि हम एक पौराणिक श्रेणी के निकट आते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय प्रसारण में संत पापा फ्रांसिस के 50 वर्षीय पुरोहिताई जीवन के अनुभवों की 7वीं कड़ी को सुना। हम इसे आगे भी जारी रखेंगे।
यीशु मेरे ऐसा प्रभुवर, जीवन मेरा लेकर मैं पाया हूँ।
यीशु मेरे ऐसा प्रभुवर, जीवन मेरा लेकर मैं पाया हूँ।
अर्पण करने चरणों में ग्रहण करो,
ग्रहण करो बलिदान मेरा।
यीशु मेरे ऐसा प्रभुवर,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत तरेम सभा के प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। संत पापा ने अमेज़न में कैथोलिक कलीसिया की 4वीं सभा के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा कि चूंकि यह जानना उत्साहवर्धक है कि हम सब एक साथ ऐसे ख्रिस्त समुदाय का सपना देख रहे हैं जो अमेज़न को आकर्षक एवं साकार रूप देने में सक्षम हो, जो अमेज़न की विशेषताओं के साथ इसके कलीसिया के चेहरे को बदल सकता है। संत पापा ने कहा, सांतारेम सभा अमेज़न समुदाय के मिशनरी कार्यों तथा कलीसिया के ठोस विवेक के विकास की याद दिलाती है। सभा के विचारों ने सिनट के उपरांत प्रकाशित प्रेरितिक प्रबोधन कारिदा अमेज़ोनिया के धर्माचार्यों के चिंतन को आलोकित किया था। उन्होंने इससे अमेज़न के लोगों के साथ कलीसिया की यात्रा के विशेषाधिकार प्राप्त अभिव्यक्तियों में से एक के रूप में वर्णित किया है। संत पापा ने ब्राजीलिया अमेज़न की कलीसिया की प्रतिबद्धता की सराहना की है, जो पिछले धर्माध्यक्ष धर्म सभा के निर्देशों का पालन कर रही है। साथ ही स्थानीय कलीसिया की सभाओं सिनोडालिटी के अनुभव की सुंदर एवं मजबूत परम्पराओं का साक्ष्य समन्वय सहभागिता एवं मिशन के रूप में दे रही है, जिसके लिए पूरी कलीसिया बुलाई गई है। संत पापा ने जीवन शक्ति बल और आशा के साथ 2019 में सिनड में भाग लेने वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें ईश्वर के कार्यों के लिए खुला होने का प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने सब कुछ की सृष्टि की है और यीशु ख्रिस्त में अपना सब कुछ हमारे लिए अर्पित कर दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से नई प्रतिबद्धता के साथ सुसमाचार की घोषणा करने और सृष्टि की सुंदरता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, अमेज़न की यह भूमि और भी अधिक उत्साहजनक है, क्योंकि वहां पुनर्जीवित प्रभु की एक प्रभावशाली उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। संदेश के अंत में संत पापा ने प्रतिभागियों के लिए अमेज़न की रानी नाजरेत की माता मरियम से प्रार्थना की तथा उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के अप्रवासी अमशरनाथी विभाग ने एक वीडियो जारी किया है तथा वेनेजुएला की एक अप्रवासी अन्ना के अनुभवों पर प्रकाश डाला है, जिसने इक्वाडोर में अपने परिवार के साथ नए जीवन की शुरुआत की। संत पापा ने कहा, लेकिन दुर्बलों को केंद्र में रखने का अर्थ क्या है? अप्रवासी एवं शरणार्थियों पर संत पापा का वीडियो संदेश मंगलवार को प्रकाशित हुआ, जो कई अप्रवासी एवं शरणार्थियों तथा मानव तस्करी के शिकार लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। संत पापा ने जोर देते हुए कहा, भविष्य में किसी को भी वंचित ना किया जाए। उन्होंने सभी लोगों का आह्वान किया कि ऐसे लोगों को केंद्र में रखा जाए। केंद्र में सबसे कमजोर लोगों को रखने का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है सुसमाचार को केंद्र में रखना और यह समझना कि किसी भी बिंदु पर हम में से प्रत्येक जन किसी भी समय खुद को हाशिए पर कमजोरी की स्थिति में पा सकते हैं। अन्ना एलिसा वेनेजुएला में 3 बच्चों की मां हैं, जिन्हें संकट के कारण अपने पति के साथ इक्वाडोर भागना पड़ा ताकि अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सके। संत पापा फ्रांसिस ने ओंडो धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष एवं विश्वासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया है, जहां पेंतेकोस्त रविवार के दिन हुए हिंसक हमले में 50 कैथोलिक विश्वासियों की जान चली गई। संत पापा ने 6 जून को एक तार संदेश भेजकर भयंकर हिंसक आक्रमण के लिए दुख प्रकट किया, जो नाइजीरिया के ओंडो जिले के ओवो कैथोलिक गिरजाघर में रविवार को हुआ। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन द्वारा ओंडो के धर्माध्यक्ष जूड अरोगुंडाडे को प्रेषित संदेश में संत पापा ने इस अकथनीय हिंसा के कृत्य से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थनाओं का आश्वासन एवं अपना आध्यात्मिक सामीप्य प्रदान किया है। संदेश में कहा गया है कि संत पापा मृतकों की आत्मा को सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रेमी करुणा को सौंप देते हैं तथा घायलों एवं शोकित प्रियजनों पर दिव्य चंगा एवं सांत्वना की याचना करते हैं। वे घृणा और हिंसा के अंधे लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे शांति एवं धार्मिकता का रास्ता अपना सकें। रविवार को ओवो के संत फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर में कैथोलिक विश्वासी पेंतेकोस्त महापर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, जिन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 50 है, जो अनुमानतः बढ़ सकती है। इस हिंसक हमले की कलीसिया एवं नागरिक दोनों ही नेताओं ने कड़ी निंदा की है तथा नाइजीरिया की सरकार ने अपराधियों का पता लगाने का प्रण किया है। ताज संदेश में संत पापा ने मृतकों की आत्माओं को ईश्वर की दया को समर्पित किया है तथा घायलों एवं शोकित लोगों के लिए दिव्य चंगा एवं सांत्वना की याचना की है। अंततः संत पापा ने धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष एवं विश्वासियों पर सांत्वना और शक्ति के दिव्य आशीष की याचना की है ताकि वे सुसमाचार के संदेश को निष्ठा एवं साहस के साथ जी सकें। कैथोलिक कलीसिया में तीर विनती एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है, जो अत्यंत सरल एवं शक्तिशाली प्रार्थना है। संत पापा ने विश्वासियों को तीर विनती करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं आप सभी को पवित्र आत्मा का आह्वान दिन में बार बार करने का प्रोत्साहन देता हूँ। उनकी अच्छी और रचनात्मक शक्ति हमें बाहर निकलने एवं दूसरों के लिए सांत्वना और आशा का चिन्ह बनने में मदद दे। स्तोनिया के ख्रिस्तियों ने तालिन स्थित ईश्वर की तीन हाथों वाली माता यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक गिरजाघर में पेंतेकोस्त महापर्व के अवसर पर यूक्रेन में शांति हेतु प्रार्थना की। स्तोनिया के ख्रिस्तियों ने पेंतेकोस्त की पूर्व संध्या एक साथ जमा होकर यूक्रेन में युद्ध से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना की। जागरण प्रार्थना तालिन स्थित तीन हाथों वाले ईश्वर की माता गिरजाघर में सम्पन्न हुई। यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के पल्ली पुरोहित फादर रोमन कीक ने प्रार्थना सभा का संचालन किया। उनके साथ इस्तोनिया के प्रेरित प्रशासक धर्माध्यक्ष फिलिप जॉर्डन और इस्तोनिया के लुथेरन महाधर्माध्यक्ष उर्मास विल्मा ने भी प्रार्थना सभा में भाग लिया। उनके साथ इस प्रार्थना सभा में इस्तोनिया की विभिन्न कलीसियाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। प्रार्थना के दौरान अपने छोटे प्रवचन में धर्माध्यक्ष जॉर्डन ने यूक्रेन के लोगों के अनुभवों पर प्रकाश डाला, जो युद्ध शुरू होने के समय इस्तोनिया में थे। उन्होंने कहा, उनमें से कई यूक्रेन में रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए अपने देश चले गए, किंतु वहां जाने से पहले वे ग्रीक कैथोलिक पुरोहितों के पास पाप स्वीकार के लिए गए। धर्माध्यक्ष ने कहा कि वे मरने के लिए तैयार होना चाहते थे, जो अब मौत के शिकार हो चुके हैं। धर्माध्यक्ष ने ख्रिस्तीय एकता प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों को बतलाया कि वे खासकर उन पत्नियों एवं बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पिता युद्ध में संघर्ष करने के लिए उन्हें छोड़ दिए हैं। स्तोनिया कलीसिया समिति के अध्यक्ष लुथेरन महाधर्माध्यक्ष विल्मा ने दृढ़ता के साथ कहा कि बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती, हम जानते हैं कि ईश प्रजा की जीत होगी। देश क्रूर युद्ध के कारण अत्यंत बुरे दौर से गुजर रहा है। धर्माध्यक्ष ने यूक्रेन के लोगों के प्रति सहानुभूति एवं एकात्मकता व्यक्त किया। फरवरी में रूसी हमले के बाद मई के अंत तक करीब 40,000 यूक्रेन इस्तोनिया पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।